भगवान कहते हैं आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्व उपात्त साधन समाश्रयित सद्गुरुमात्म लब्धये। तुमको गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। गुरु जी की शरण में कब जाना चाहिए? पहले अपने वर्णाश्रम के जो कर्तव्य कर्म है उन कर्तव्य कर्मों का संपादन करने के बाद जब अपना अंतःकरण निर्मल हो जाए और ज्ञान की प्रबलतम इच्छा हो तो सबको छोड़ छाड़ करके उन कर्मों को छोड़ करके गुरु जी की शरण में जाए। कहते हैं कि गुरु जी की शरण में यूं ही चले जाए तो कि यूं जाओगे तो आपके अंदर कर्म करने की इच्छा रहेगी, आत्म कल्याण करने की इच्छा नहीं रहेगी। कर्म करते हुए आत्म तत्व का बोध हो जाए ये लक्षण इसलिए संभव नहीं है कि कर्म भी करने की इच्छा होगी तो कल्याण की भी इच्छा होगी। कल्याण की जो इच्छा होती है उस समय में अनन्यता चाहिए, एक कल्याण की ही इच्छा होनी चाहिए। मनुष्य के मन में कल्याण की भी इच्छा होती है और कुछ कर्म करने की भी इच्छा होती है। लोग कहते भी हैं कि क्या करें जी, अब भगवान का भजन करें नाम स्मरण करें बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का खर्चा भी तो चलना चाहिए ना। बाल बच्चों की फीस है, हरी बानी बीमारी होती है उसमें भी खर्चा लगता है, विवाह शादी करते हैं उसमें भी खर्चा लगता है, तो खर्चा लगता है तो खर्चा निकालने के लिए हमको कुछ करना ही पड़ेगा। तो कल्याण की इच्छा के अंदर कमाने की इच्छा साथ साथ दोनों इच्छाएं चलती है, इसलिए ये बड़ी कठिन बात होती है। तो पहले अपना कर्तव्य कर्म कर लो, कर्म करने के बाद चित्त इतना निर्मल हो जाए कि मुझे कुछ करना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं क्यों कर्म करूं, क्योंकि अब बाल बच्चे सब कर्म करने लायक हो गए। ऐसा जब विचार कर लेता है छोड़ दे, सब कर्मों को स्वरूप से छोड़ देवे, क्योंकि फिर भी कर्म करते रहोगे तो उस कर्म से आपको शरीर मिलेगा। यदि आपने शुभ कर्म किया तो अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी परिस्थिति मिलेगी, अशुभ कर्म किया तो आपको अशुभ शरीर मिलेगा और अशुभ फल मिलेगा। धर्म और धर्म का फल सुख और दुख होता है, सुख और दुख भोगने के लिए आपको शरीर लेना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म का त्याग कर देना चाहिए। संसार में आवागमन का मूल कारण अज्ञान है, इसलिए अज्ञान का नाश है वो कर्म नहीं करता है, अज्ञान का नाश है वो ज्ञान करता है। और ज्ञान का और कर्म का आपस में पूरा विरोध है। विरोध क्या विरोध है कि तो उसमें विरोध यह है कि अज्ञान से कर्म पैदा होता है और कर्म से सुख दुख भोगना पड़ता है, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, अज्ञान नष्ट होने से उसको स्वरूप उपलब्धि होती है तो मुक्ति हो जाती है। अतएव कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग कर देना चाहिए। नाज्ञान हार्दिर नचराग संक्षय है भवेत ततः कर्म सदोष मुद्भवेत। यदि आप अपने सकाम अनुष्ठान में लगे रहोगे तो कर्म का तो ये अज्ञान का तो नाश होगा नहीं और राग बढ़ता ही रहेगा, राग है द्वेष है ये बढ़ते रहेंगे और सदोष कर्म होते रहेंगे, तो फिर संसार में आओ फिर जाओ फिर आओ फिर जाओ। इसलिए ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कर्म का त्याग करके ज्ञान में स्थित होते हैं। ये एक बात अपनी भगवान ने कह दी। अब भगवान इस बात को प्रश्नोत्तर से समझाते हैं कि देखो लक्ष्मण, कोई कोई ये प्रश्न कर सकता है कि कर्म करने का आदेश तो स्वयं वेद देता है, वेद कहता है कि कर्म करो, ब्राह्मण को ये कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए, वैश्य को ये करना चाहिए, शूद्र को ये करना चाहिए, वेद आज्ञा देता है। और वही वेद ये भी कहता है कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप पुरुषार्थ मिलता है, दोनों ही बात ये वेद बोलता है। तो उस ज्ञान के लिए कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करेंगे तो आपको ज्ञान में सहायता मिलेगी, और कर्म नहीं करोगे तो शास्त्र की बात का उल्लंघन होगा और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, इसलिए आपको जो है कर्म करना ही चाहिए। क्योंकि ज्ञान है वो कर्म के बिना ज्ञान उदित नहीं होगा, कर्म नहीं, ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, कर्म करेंगे तभी, कर्म करेंगे तभी ज्ञान का ज्ञान होगा, इसलिए ज्ञान कर्म के अधीन है। विद्या न किंचित मनसाप्यपेक्षते, इसलिए मन से भी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे तो ये ठीक नहीं है। विद्या के लिए, ज्ञान के लिए कर्म की आवश्यकता है, ऐसा यदि कोई कहता है तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य कार्योपि यदध्वर, जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ रूप जो सत्य कर्म है उसमें कितने कारकों की अपेक्षा रहती है। एक यज्ञ करना है, अमुक वस्तु लाओ, ब्राह्मण लाओ, वो भी वैदिक मंत्र बोले, और फिर जो है घृत आदि कई वस्तुओं की आवश्यकता, देश काल परिस्थिति की आवश्यकता। तो कर्म है वो जैसे कई वस्तुओं की अपेक्षा रखता है, ऐसे ज्ञान भी कई प्रकार के कर्मों की अपेक्षा रखता है, इसलिए ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, कर्म पूर्वक ही ज्ञान कल्याण करता है, कर्म रहित ज्ञान कल्याण नहीं करता, ऐसा यदि कोई मानता है तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये चीज असत है, ठीक नहीं है, दृष्ट विरोध कारणात्, इसमें प्रत्यक्ष में विरोध पड़ा है। क्या? कि कर्म कब होता है? जब शरीर को मैं मानते हैं, क्रिया होती है शरीर में। देखो खास बात क्या बोलना चाहते हैं कि क्रिया होती है शरीर में, ज्ञान होता है आत्मा में। अब शरीर में होने वाली क्रिया है वो आत्मा में होने वाले ज्ञान की क्या सहायता करेगा? देहाभिमानाद अभिवर्तते क्रिया, और विद्या गता अहं कृतितः प्रसिद्ध्यति। देहाभिमान से कर्म पैदा होता है और अहंकार के नाश से ज्ञान पैदा होता है, इसलिए विद्या जो होती है, कर्म जो होता है, वो विद्या की सहायता कर नहीं सकता है। विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता विद्यात्म वृत्ति चरमेति भन्यते। जब विशुद्ध ज्ञान होता है, उस विशुद्ध ज्ञान के प्रभाव से जब आत्मवृत्ति उदित होती है ना, चरम आत्मवृत्ति होती है, उसको विद्या बोलते हैं। एक मैं हूं ऐसा भाव हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। विद्या कह दो, ज्ञान कह दो, एक ही बात है। और कर्म, कर्म का ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं। कर्म होता है कारकों के द्वारा, माने कर्म की सामग्री के द्वारा। शरीर से कर्म होगा, मन से कर्म होगा, बुद्धि से कर्म होगा, और विद्या है वो सारे अखिल कारकों की आवश्यकता का नाश करती है, और कर्म सारे कारकों को पैदा करती है। ऐसे एक दूसरे के अधीन कहां रहे, विरोधी हुए। इसलिए भाई इन दोनों का समन्वय नहीं हो सकता, विद्या का और कर्म का, ज्ञान का और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। संपूर्ण प्रकार के इंद्रियों की वृत्तियों को निवृत्त करने पर आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए कर्म का और आत्मा का दोनों का बिल्कुल अलगाव रहता है। जब तक शरीर के अंदर माया के द्वारा अपना आत्मबुद्धि बनी रहती है तब तक उसको कर्म करने चाहिए। कर्म करने की एक सीमा है, सीमा इतनी है कि शरीर में मैं बुद्धि है, मेरी भाव और मेरी बुद्धि शरीर मेरा है और मैं शरीर हूं, ऐसी भावना है तब तक कर्म करो। और न इति न इति, जब इधर ये पता चले कि अरे संसार है ही नहीं, शरीर मैं नहीं हूं तो मेरा कैसे होगा, जब मैं नहीं तो फिर मेरा भी नहीं, मेरा होने के बाद ही मैं होने के बाद ही तो कोई मेरा होता है, शरीर मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं तो फिर बाद में शरीर मेरा भी कैसे। तो सबका निषेध करने के बाद अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तब क्रिया से कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए कर्म करना कोई जरूरी नहीं है ज्ञानी के लिए, कर्म का त्याग करो। यदा परात्मात्म विभेद भेदकम ज्ञानम आत्मन्यवभाति भास्वरम, और जब जीवात्मा और परमात्मा का जो भेद ज्ञान है वो भेद ज्ञान दूर हो जाता है तब स्वच्छ ज्ञान पैदा होता है अपने आप में, उस समय माया है वो अपने आप लीन हो जाती है। जैसे सूर्य उदित होता है तो अंधकार अपने आप ही लीन हो जाता है, जाने कहां चला जाता है, अंधकार के जितने कारण हैं सब लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अतएव यही मानना पड़ेगा कि कर्म करना हमारे लिए कल्याण करने के लिए जरूरी नहीं है, शास्त्र भी यही बात बोलते हैं। न कर्मणा न प्रजया त्यागेन एकेन अमृतत्वमानसु, कहते हैं कि कर्म का त्याग कर दोगे और आत्मा का बोध हो गया, फिर उस समय कभी अज्ञान आ गया तो कि नहीं वो ज्ञान होता ही नहीं। लोग कहते हैं सत्संग में जाते हैं तब तो हमको बात बहुत अच्छी लगती है, समझ में आती है, और जब हम वापस घर चले जाते हैं तो वो बात लुप्त हो जाती है। क्या कारण है, लोग देखते हैं कि कोई बात में कमी है। बात में कमी नहीं है सज्जनों, हमारी धारणा में कमी है। देखो अज्ञान एक बार निवृत्त हो जाता है, वो निवृत्त हो ही जाता है, फिर दोबारा अज्ञान नहीं आता कि भाई पहले तो हमारे समझ में आ गया और फिर वो नहीं आया। वो क्या है, वो बुद्धि में ही आती है समझ में। जो ज्ञान कभी तो प्रकट होता है और कभी छिप जाता है, वो ज्ञान बुद्धि का ही ज्ञान है, ऊपर ऊपर का ही ज्ञान है, अंदर आत्मा में बैठा हुआ ज्ञान नहीं है। यदि आत्मा का बोध हो जाए फिर कैसा, आत्मा का बोध तो हो गया लेकिन फिर भी हमारे तो अज्ञान हो गया, तो असंभव बात है। सूर्य उदित हो जाए और अंधकार रह जाए, गुफा की बात नहीं करते, गुफा के लिए तो सूर्योदय हुआ ही नहीं, लेकिन हम आम जो है चौड़े चौगान में खड़े, सूर्योदय हो गया और अंधकार आ जाए, असंभव है। तस्मात् स्वतंत्रा न किमप्यपेक्षते, इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, वो किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता मुक्ति के लिए, तो यही बात है। और आप जो ये कहते हो कि यज्ञ आदि में जैसे और वस्तुओं की जरूरत रहती है ऐसे ज्ञान के लिए कर्म की आवश्यकता रहती है, तो कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा उसको कई प्रकार का फल प्राप्त करना है, ज्ञान के द्वारा कोई फल थोड़े ही प्राप्त करना है। ज्ञान के द्वारा तो अपने स्वरूप का बोध करना है। देखो कर्म के द्वारा तो वो प्राप्त करना है जो अभी प्राप्त नहीं है, अभी प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना है कर्म के द्वारा, लेकिन ज्ञान के द्वारा जो मिलेगा वो वही मिलेगा जो मिला हुआ है। देखो कितना संतों ने मार्मिक जो है एक संसार के और परमात्मा के बीच में अलगाव किया है। कर्म के द्वारा वो चीज मिलेगी जो मिल ही नहीं सकती, मिलती नहीं, कम से कम अभी तो मिली भी है ही नहीं। जो अभी नहीं है वो कभी नहीं है, जो अभी नहीं है वो कभी भी नहीं है, और जो अभी है वो सदा है। देखो हम लोगों की क्या समस्या है कि भगवान पहले थे, ये तो बात हम बहुत आराम से मानते हैं, पहले भगवान थे, सृष्टि के पहले थे और सृष्टि के बाद भी भगवान रहेंगे, लेकिन वर्तमान में तो संसार है ना, ये गलती बात है। घड़े से पहले मिट्टी है और घड़े के बाद मिट्टी है, इस ज्ञान में इतना दम नहीं है, ये तो अनुमान है। लेकिन अभी भी घड़ा नहीं मिट्टी है, बस यही समझने की है बात। घड़ा नहीं है मिट्टी है, ये घड़ा है ना, देखो ये घड़ा है ना, अरे घड़ा नहीं है मिट्टी, घड़ा बताओ देखें आप जिसको घड़ा बोलते हो वो जो है ज्ञानी पुरुष उसको मिट्टी बोलता है, तो मिट्टी बोलना सही है कि घड़ा बोलना सही है? आप लोग कहेंगे कि घड़ा बोलना सही, घड़ा है ना, अरे घड़ा तो नाम रखा हुआ है, मिट्टी है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक सिवाय मिट्टी के क्या है? इसलिए कर्म को और ज्ञान को किसी प्रकार से मिला नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि कर्म का त्याग करेंगे तो हमको कोई प्रत्यवाय लगेगा, ऐसी बात नहीं है, ये मूर्खों की बात होती है, विवेकी आदमी की बात नहीं होती। क्योंकि अनात्म बुद्धि है वही कर्म की तरफ खींचता है, ज्ञानी आदमी नहीं खींचता है। इसलिए कर्म को छोड़ो और ज्ञान को प्राप्त करो, ये एक चैप्टर पूरा हो गया। अब दूसरा चैप्टर प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ज्ञान कैसे होता है? गुरु के पास गए तो गुरु ने आपको कहा कि तत्त्वम असि, तत्त्वम और असि तीन बात कही, तत्त्वम असि वो तुम हो, वो माने भगवान, वो माने परमात्मा, वो तुम हो, तुम माने हे जीवात्मन, वो परमात्मा तुम और हो, ये तीन वाक्य कहे। तत्त्वम असि तो गुरु जी ने बड़ी कृपा करके शुद्ध मन वाले शिष्य को ये उपदेश दिया। तब वो क्या करता है, शिष्य उपदेश का अर्थ निकालता है कि वो परमात्मा मैं कैसे हो गया भाई, वो परमात्मा मैं कैसे हूं? देखो ये बात लोगों के प्राय समझ में कम आती है कि मैं परमात्मा कैसे हूं। परमात्मा तो अनंत सृष्टि बनाते हैं, परमात्मा अनंत शक्ति वाले हैं, परमात्मा तो चाहे जो कुछ कर लेते हैं, परमात्मा तो कोई कर्मों का फल भोगते ही नहीं, हम तो सुख दुख भोगते हैं, हम तो असमर्थ हैं, हम कोई छोटा सा भी काम नहीं कर सकते, भगवान अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं तो हम भगवान कैसे हुए जी? प्राय लोगों को पूछ लो यही जवाब देंगे, हम भगवान कैसे हो गए, भगवान तो सब कुछ बनाते हैं। तब कहते हैं कि देखो आप जगत के व्यवहार को छोड़ करके और विचार करो कि आप और भगवान एक हो कि नहीं। जगत को पैदा करना, पालन करना और जगत को समेटना और अनंत प्रकार की शक्तियां रखना, इनको छोड़ो, एक चीज देखो कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तो तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप हो, यहां आप एक हो एक। जैसे भाई एक आदमी एक जाति में, एक वो दूसरा आदमी भी एक आदमी के पास करोड़ों नहीं अब जो रुपया, और एक आदमी के पास सचमुच ही उसी जाति का है, उसके पास सुबह का और शाम का, सुबह खा ले तो शाम का पता नहीं, शाम को खा ले तो सुबह का पता नहीं, इतना गरीब है, फिर भी क्या आप क्या बोलते हैं? कह रही है हमारे जाति का है, ये हमारी जाति का है, हम भी माहेश्वरी है, ये भी माहेश्वरी है। ये आपके जाति का है, आपका तो देखो कितना बड़ा रुपया आपके पास, इसके पास तो सुबह शाम का ही पता नहीं। कह देखो ये परिस्थितियां तो अलग अलग है, हमारे पर थोड़ी राम जी ने विशेष कृपा कर रखी है, इनके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, जाति में हम एक हैं। ऐसे ही कहां तो परमात्मा और कहां जीवात्मा, ये तुलना आप कहां कर रहे हो? जगत को लेकर तुलना कर रहे हो। तो कहते हैं जगत को लेकर तुलना मत करो, यहां सच्चिदानंद तत्व को लेकर के विचार करो। विज्ञाय चेकात्म्यम, इनकी एकात्मता देखो, एकात्मता की परमात्मा चेतन तो ये भी चेतन, परमात्मा नित्य तो जीव भी नित्य, परमात्मा ज्ञान स्वरूप तो जीव भी ज्ञान स्वरूप, इसके अंदर एकता है। उस दृष्टि से गुरु बोलता है कि तत्त्वम असि। कहते हैं वाक्य के अंदर तो ये बात आती नहीं, वाक्य का अर्थ तो यही है कि तत्त्वम असि, वो तुम हो, वो तुम हो ये कह दिया, तो वो तुम हो ये बात कही है तो जो है यहां वाक्य के अंदर तो ये नहीं कहा है कि भाई दोनों की एकता है। वाक्य में तो दोनों में भिन्नता लग रही है बस। तब फिर बात बोलते हैं कि यहां पर प्रत्यक्ष में विरोध दिखता है, परंतु यहां पर विरोध दिखते हुए भी इसमें जो है कायदा दूसरा है कि जिस शब्द का, जिस शब्द के साथ अर्थ करना है, जो विरोध होता है, विरोध विरोध की बातें तो हटा दो, और जो एकता की बातें हैं उन एकता की बातों को ले लो। जैसे किसी, जैसे कभी कहा जाए कि भाई गंगा जी के ऊपर मकान है, उस आदमी का मकान तो गंगा जी पर ही है, गंगायाम गृहम अस्ति, तो गंगा जी पर घर है, तो गंगा जी के ऊपर घर बन सकता है क्या? गंगा जी तो यूं प्रवाह में चलती है, कैसे होगा? गंगा जी पर घर है का अर्थ है गंगा जी के तट पर घर है। तो गंगा अर्थ भी रह लिया और कुछ अर्थ का जो विरोध था वो त्याग भी दिया, और थोड़ा सा दूसरा अर्थ भी ले लिया। इस प्रकार से तत्वम असि, वो परमात्मा तुम हो, तो चेतन चेतन अंश तो रख लो और दूसरे सबका विरोध कर लो। अब कहते हैं कि अपने अंदर जो आत्मा है वो तो शरीर आदि से मिली हुई है, तो मिली हुई आत्मा है शरीर आदि से, तो उसको परमात्मा के साथ एक कैसे माने? तब कहते हैं कि अपना शरीर वास्तव में किसी के साथ मिला ही नहीं है। चावल और तिल है, दोनों को मिला दे तो मिल सकते हैं क्या? क्या तिल है वो चावल के अंदर मिल सकता है क्या? क्या चावल तिल के अंदर मिल सकता है कि तिल चावल में मिल सकता है? तिल और चावल आप मिला दो वो तो आपस में नहीं मिल सकते, मिल ही नहीं सकते। चावल की आकृति लंबी है, चावल की आकृति सफेद है, और चावल के अंदर जो है दूसरी चीज है, तिल के अंदर तेल होता है, तिल काला होता है, तिल छोटा होता है, तिल और चावल कभी मिल ही नहीं सकते। ऐसे ही आत्मा और शरीर कभी मिल ही नहीं सकते। आत्मा पर शरीर की तीन प्रकार की उपाधि है, उपाधि उपाधि माने तीन प्रकार की मिलावट है। तीन प्रकार की मिलावट क्या है? एक तो स्थूल शरीर की मिलावट है, एक सूक्ष्म शरीर की मिलावट है, एक कारण शरीर की मिलावट है। यूं ये मिलावा दिखता है यूं। तो स्थूल शरीर तो ये पांच भूतों से बना हुआ, रसादि पंचीकृत भूत संभवम भोगालयम दुख सुखादि कर्मणाम शरीरम, ये शरीर हुआ सा। और स्थूलम उपाधि भूतम, ये उपाधि है। और सूक्ष्म क्या है कि सूक्ष्म मनोबुद्धि बुद्धि दशेन्द्रियेरि युतम, मन बुद्धि इंद्रिया और प्राण, इनसे युक्त जो हो 17 तत्व है, 17 तत्व है, इसकी सूक्ष्म उपाधि है आत्मा की, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म क्यों बोलते हैं? ये स्थूल पिंड तो देखने में आता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर देखने में नहीं आता है। अपन कहते हैं देखो ये मेरी आंख है, तो ये आंख ये नहीं है सज्जनों, ये नाक नहीं है, ये कान नहीं है, ये जीभ नहीं है, है ही नहीं है। देखो आंख भी क्या है? एक 5 भूतों की बनी हुई पुतली है, नाक है ना, ये नाक ये भी पांच भूतों से बना हुआ है, कान भी पांच भूतों से बना हुआ है, जीभ भी पांच भूतों से बना हुआ है, लेकिन बोलते क्या है कि ये मेरी कर्णेंद्रिय है, ये मेरी घ्राणेंद्रिय है, ये मेरी रसनेन्द्रिय है, ये मेरी चक्षुर इंद्रिय है, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं कि काम करने की जगह है ये, लेकिन इंद्रिय को नहीं देख सकते, नेत्र को कभी नहीं देख सकते हम। आपके नेत्र को मैं नहीं देख सकता, मेरे नेत्र को आप नहीं देख सकते, आपके कान को मैं नहीं देख सकता, मेरे कान को आप नहीं देख सकते, बल्कि अपने इंद्रियों को हम देख सकते हैं कि मेरी आंख काम करती है, मेरा नाक कान काम करता है कि नहीं, मेरी नाक काम करती है कि नहीं, जीभ काम करती है कि नहीं। तो ये सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर अनादि काल का कर्माभ्यास, कर्म करने का तरीका है, स्वभाव है, आदत है, वो उसके अंदर रहती है। देखो सबकी चाल एक जैसी नहीं होती, जितने भी चलते हैं ना, सबकी चाल अलग ढंग की होती है, बोलने का तरीका एक नहीं होता, समझने का तरीका एक नहीं होता, समझाने का तरीका एक नहीं होता, हंसने का तरीका एक नहीं होता, हंसी में हंसी एक जैसी है, रोना एक जैसा है, वो आवाज आवाज में एक जैसा है, परंतु फिर भी भिन्नता रहती है। ये क्या है, स्वभाव की कारण शरीर की भिन्नता है। ये तीन प्रकार के शरीर की उपाधि का त्याग किया जाए तब वो अपने आप का ज्ञान होता है। ऐसे ही कोशे स्वयं ते सुत तत्तदाकृतिर, ऐसे ही पांच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश और आनंदमय कोश। बुद्धिमय कोश को कोई ज्ञानमय कोश बोल देते हैं। अब अन्नमय कोश है, अर्थात जब भूख लगती है तो आत्मा कहता है कि मुझे भूख लगी आई साहब, मुझे भूख लगी आई। प्राणों पर आफत आती है तो साहब क्या करें, अब जो है प्राणों पर आफत आ गई, मरेंगे हम, मरेंगे। अरे आप थोड़ी मरोगे, शरीर में से प्राण निकलेगा, लेकिन प्राण के साथ आत्मा का तादात्म्य हो गया तो साहब तो मरना पड़ेगा। तो मरता है, मरता कौन है, आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। कोशे स्वयं ते सुत तत्तदाकृति, लेकिन आत्मा के अंदर ये प्रतीति कैसे होती है, जैसे कोई स्फटिक मणि हो, उसके पास में कोई लाल वस्तु रख दे हूं तो वो उसके अंदर ललाई चली जाती है, ऐसे स्फटिक मणि और ये पास में लाल फूल रख दिया तो इसकी ललाई उसमें दिखने लग जाएगी। असंग रूपो ये मजो यतो अद्वयो विज्ञायते अस्मिन परितो विचारिते, ठीक ढंग से विचार करे तो आत्मा का इन पांचों कोशों से भी कोई संबंध नहीं। और बुद्धि की तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। ये बुद्धि की अवस्था है सज्जनों, आत्मा की अवस्था नहीं है। अब देखो क्यों निरर्थक हम लोग दुख पाते हैं, कोई आदमी गहरी नींद में सोया हुआ हो, जगते ही कहेगा कि अरे मेरा तो जो है लड़का मर गया, मेरा ये हो गया, मेरा धन चला गया, मेरा ये हो गया, दुख पाता है। अरे तो जागृत अवस्था क्यों लेकर के ही तो दुख हो रहा है, तेरा आत्मा से क्या मतलब, तू तो आत्म रूप है। सज्जनों ये बात केवल कहने सुनने की नहीं है, ये सुबह पहले उठ करके और 3, 3:30, 4 बजे उठ करके सबसे पहले यही विचार करना चाहिए कि आत्मा में क्या चीज है, संसार की कौन सी चीज मिली हुई है। हम तो सज्जनों इधर समय लगाते ही नहीं है, रात दिन ये कर लिया और वो कर लिया, वो कमाना है, वो धन करना है, वो काम करना है, आज वो काम बाकी है और ये मूल काम हमारा बाकी रह जाएगा, ये तो रोज सोचने का है। अच्छी तरह से जब तक ये चीज समझ में न आए, कोई कहता है साहब हमारे तो समझ में आ गया, आ गया तो भाई आपके हर्षोक नहीं होना चाहिए। गीता जी बहुत जल्दी सर्टिफिकेट नहीं देती है, और शास्त्र तो जल्दी सर्टिफिकेट दे देते हैं, पर गीता जी कहती है प्रजहाति यदा कामान, कोई कामना न रहे, सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। ऐसी बात है, कोशी स्वयं तेषु तो तत्तदा कृतिर विभाति संगात स्फटिकोपलो यथा। इसलिए जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति में जागृत नहीं, जागृत में सुसुप्ति नहीं, तीनों अवस्थाओं में ही आपस में एक दूसरे का भेद है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप आत्मा में तीनों अवस्था अलग अलग दिखती है साफ। मैं जगा, सपना देखा और मुझे कुछ पता नहीं था, तीनों चीजों का ज्ञान है। ये ज्ञान जिसको होता है वो तीनों अवस्थाओं से अलग होता है। देहेन्द्रिय प्राण मनस चिदात्मनाम संगात अजस्रम परिवर्तते धीय है। देह इंद्रिया मन और चिदाभास चेतन आत्मा का जो संघात रूप है, ये मिला हुआ रूप है, ये परिवर्तित होता रहता है। और यावत भवे तावत असौ भवोद्भव, यही इनके अंदर जब आत्मा अपनी मिलावट मानता है तब उसका जन्म मरण होता है, और आपता इसको आत्मा इसको अलग मान लेता है तो जन्म मरण का उसका चक्र खत्म हो जाता है। इसलिए एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, देखो कलकत्ता वाले तो उस बात को खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि यहां नारियल बहुत अच्छा मिलता है पीने वाला। उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे आदमी नारियल का पानी है वो पी लिया, पीने के बाद उसको फेंक दिया, ऐसे ही शास्त्र आदि के द्वारा गुरुमुख के द्वारा नेति नेति प्रमाणे ने निराकृता खिले है, ये भी देखने में आता है ये मेरा स्वरूप नहीं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसे दिखाई देने वाले सब चीजों का निराकरण करते चले जाओ। अशेषम त्यक्त्वा, सबका त्याग कर दिया और फिर अपने आत्म स्वरूप का आनंद पूर्वक रस लेने लगे, आत्मा की नित्यता में डूब गए, आत्मा की आनंदमयता में डूब गए, अब जो है शरीर आदि से हमारा कोई संबंध नहीं है। पीत्वा यथा मैं प्रजहाति नारी केली फलम, नारियल के फल को जैसे पी करके फेंक देते हैं, ऐसे शरीर से संबंध छोड़ देवे, शरीर आदि से कोई मेरा संबंध नहीं है। देखो शरीर आदि से हमारा मानवा ही संबंध है, मानवा संबंध है वो न मानने से मिटेगा, किसी उपाय से नहीं मिटेगा। यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उससे मानवा संबंध मिट जाएगा, असंभव है, अंतकरण शुद्ध नहीं होता उससे, न मानने से मिटेगा कि मेरा संबंध नहीं है। इतने दिन मानते थे कि मेरा संबंध है, अब मेरा संबंध नहीं है, न मानने से ही मिटेगा वो। ये संतों ने देखो बहुत खोज करके अनुभव करके बात कही, सुगमता से कही। महाराज जी कहा करते थे ना कि थोड़े वर्ष रह गया तो कल्याण का मार्ग और सुगम कैसे हो सकता है, वो कुछ कह सकता हूं। तो यही बात है, वो यही बात कही कि जो मानने से जो चीज पैदा हुई है वो न मानने से ही मिटेगी। शरीर मैं हूं ये बात केवल मानी हुई है, शरीर मैं हूं ये माना हुआ है, तो शरीर मैं नहीं हूं ऐसा मानने से ये मान्यता मिटेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा न तो मरता है, न पैदा होता है, न बढ़ता है, न घटता है, आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप आनंदमय विराजमान रहता है। ऐसे आनंदमय स्वरूप का बोध हो जाए उसके पास वहां कैसे दुख होगा। तत्र को मोह है, तत्र क्या शोक है, तत्र को मोह है शोक है, वहां मोह शोक आदि नहीं होता। देखो ये पहचान है अपनी, यदि हमारे कहीं दुख होता है, हमारे कहीं जलन होती है, तो मानना चाहिए कि अभी हमारा काम नहीं बना, तो और जल्दी चलो, हताश होने के लिए नहीं, हताश होने के लिए नहीं होता। देखो कभी कभी परमात्मा की तरफ चलने वाला आदमी है उसको लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, ऐसा लगता है उसको। ठीक वैसे ही लगता है जैसे कोई आदमी पैदल चलता है 8-10 किलोमीटर तो आ गया, 1 किलोमीटर और उसका घर बाकी, तो 1 किलोमीटर उसको कठिन मालूम देता है। अरे अभी 1 किलोमीटर बाकी है, अरे तू 10 किलोमीटर चल करके आ गया, अब 1 किलोमीटर के लिए क्या हो गया? बस वो 1 किलोमीटर भारी है, वो उससे सहन नहीं होता। 1 किलोमीटर कैसे चलेंगे? 1 किलोमीटर बड़ा भारी लगता है। तो ऐसे ही जो जो परमात्मा की प्राप्ति होने की तरफ चलता है ना, त्यों त्यों नजदीक आते आते उसको कठिनता का अनुभव होता है, तो वो कठिनता का अनुभव नहीं होना चाहिए। दुख और शोक पैदा होता है इसलिए कि अज्ञान के कारण से, अध्यास के कारण से। अध्यास, अध्यास क्या होता है? एक का एक में आपस में जो है भ्रम हो जाता है, यही अध्यास है। जैसे डोरी में सांप देखा, तो डोरी में सांप बुद्धि हुई, ये अध्यास हो गया। ऐसे ही ईश्वर में जगत को हम लोग देखते हैं, जगत है, ईश्वर कहाँ है? अरे ईश्वर ही है। कहते हैं ये भगवान कैसे है, ये भगवान कैसे है, ये तो कपड़ा है, अब इसको भगवान कैसे कहेंगे? ये भगवान कहाँ, ये तो कपड़ा है साहब, भगवान कहाँ है? प्राय हम लोग यही कहेंगे, भगवान कैसे है, तो कपड़ा। अरे कपड़ा तो नाम रखा हुआ है, अपन कपड़ा बोलते हैं, वो क्लॉथ बोलते हैं अंग्रेज लोग, कोई क्या बोलते हैं, गुजराती में कापड़ बोलते हैं, कापड़, कापड़ा बोलो चाहे कुछ भी, तत्वतः ये भगवान है। कि ये समझ में नहीं आ रहा है साहब, ये भगवान कैसे है, ये तंतु है। अरे तंतु तो है, लेकिन तंतु भी तो नाम ही है, इसमें जो डोरे हैं वो भी तो नाम ही है। तो फिर ये जो डोरे है ना, ये डोरे काय से बनते हैं कि रुई से बनते हैं? तो रुई तो नाम है। पदार्थ क्या है? पदार्थ, पदार्थ जो होता है उसके कारण पर विचार करो कि रुई काय से पैदा होती है, जमीन से, जमीन काय से पैदा होती है कि जल से, जल काय से पैदा होता है, आग से, आग काय से पैदा होती है, वायु से, वायु काय से पैदा होता है, आकाश से, आकाश काय से पैदा होता है, प्रकृति से, प्रकृति काय से पैदा होती है, परमात्मा से। ये तो परमात्मा का वंशानुगत है, इसलिए ये परमात्मा है। किसी से पूछे आप कौन है? साहब हम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण क्या है, कैसे ब्राह्मण है, क्यों ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है? कि माता पिता ब्राह्मण है, उनके पिता ब्राह्मण है, उनके पिता ब्राह्मण, उनके पिता, ऐसे करते करते हमने आदि पुरुष को नहीं देखा है, पर मानना ही पड़ेगा कि आदि पुरुष ब्राह्मण था, ये देखना चाहिए। असर्वभूते अ भावनम्यथा रज्वादिके तद्वदपीश्वरी जगत, इस ईश्वर में जगत का आरोप कर लिया। विकल्प माया रहिते चिदात्मके, विकल्प और माया से रहित चिन्मय जो परब्रह्म परमात्म स्वरूप होता है वो निरामय है, अद्वितीय है, चित स्वरूप है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले अहंकार की कल्पना हुई, उसके बाद सारा संसार जुड़ा है। अहंकार की कल्पना हुई तब इच्छा है, राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, सब पैदा होने लगे। और जब आनंदमय अपने स्वरूप में चले जाए कोई नहीं हो। देखो एक नेवड़ा है, नेवड़ा और एक सांप, इन दोनों की खूब लड़ाई होती है, लड़ाई दिखाते हैं, लड़ाई दिखाते हुए सांप जब नेवड़े पर यूं खूब जो है प्रहार करता है, तब नेवड़ा दौड़ करके एक बिल में जाता है, उस बिल के अंदर उसकी एक बूटी रहती है, वो उस बूटी को सूंघता है, सूंघते ही उसमें ताकत आती है, वो वापस बाहर निकल करके सांप से लड़ता है और अंत में सांप को खा जाता है। ऐसे ही भाई संसार के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए कि ये संसार के साथ में जो हमारा राग द्वेष ये होता है ना, ये संसार रूपी सांप का जहर चढ़ गया, तो क्या करो कि सत्संग रूपी बिल में जाओ और वहां जाकर के सत्संग की बातें सुनकर के, अरे ये संसार नहीं, भगवान है, भगवान ये भगवत स्वरूप है, ऐसा विचार करते ही ताकत आती है। फिर ये राग और द्वेष कहां से हो गए, ये तो बनाई हुई नई सृष्टि है, कोई वास्तविक सृष्टि नहीं है। जैसे नेत्र के अंदर ये अंगुली डालते ही ये मकान दो दिखेगा, हर आदमी दो दो दिखेंगे, दो दिखते हैं, सब दो दिख रहे हैं अभी, तो ये अंगुली यहां रख देना तब दो दिखता है, नहीं तो एक ही है। ऐसे ही शरीर में जब मैं भाव पैदा होता है तब सुख दुख पैदा होता है, अपने आप में स्थित हो जाए तो कोई कुछ नहीं होगा। जैसे लोहा और अग्नि दोनों मिलते हैं तो लोहे का धर्म है आकृति, वो तो आ जाती है आग में, और आग का धर्म जलाने का वो आ जाता है लोहे में। ऐसे ही बुद्धि और आत्मा दोनों मिल गए ना, तो बुद्धि की जड़ता आत्मा में आ गई और आत्मा का ज्ञान बुद्धि में चला गया, इसलिए बुद्धि से समझ में आएगी वो बात मानेंगे, और जो बुद्धि से समझ में नहीं आएगी वो बात नहीं मानेंगे। पर ये भूल जाते हैं कि बुद्धि भी किसी के प्रकाश में काम करती है, ये बात भूल जाते हैं। इसलिए अपने गुरुजनों के पास बराबर रहकर वेद वाक्य का अनुसरण करो और अपने स्वरूप का ज्ञान करो। त्यजेद अशेषम जड़म, सब प्रकार के जड़ पदार्थों का त्याग करो और अपनी प्रकाश रूपता का अनुभव करो। प्रकाश रूपता का मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका अनुभव करो और अपने मन में ये मानो कि सदैव मुक्त हो हम, मैं वास्तव में सदा से ही मुक्त रहा हूं, मैं इंद्रियों को भी देखने वाला अतः अतीन्द्रिय हूं, मैं निर्विकार हूं क्योंकि मैं विकारों को भी जानने वाला हूं। ऐसे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, वो वास्तव में वैसे ही स्वस्थ रहता है जैसे नित्य निरंतर दवाई लेने वाला व्यक्ति बीमार नहीं होता, ऐसे वो स्वस्थ रहता है। एकांत में बैठ करके ये चिंतन करना चाहिए। बताया ना सेठ जी ने कहा सुबह जल्दी उठो, आपके काम का समय नहीं लिया, आपके सोने का समय लिया हो, 3-3:30 बजे उठ जा करके बैठ करके फिर इस विषय का विचार करो। लोगों ने तो इसको यूं ही समझा, ये भी कोई विचार करने की है, ये भी कोई बातें सोचने की है क्या, संसार के विषय में तो बड़ा गहरा दिमाग लगाएंगे, बहुत सोचेंगे, अरे असली बात तो यही सोचने की होती है। तो एकांत में बैठकर सबसे उपराम होकर इस बात का खूब अच्छी तरह से मनन करना चाहिए। विश्वम यदेतत् परमात्म दर्शनम, इस संसार को परमात्मा की बुद्धि से देखो। नवेद बाह्यम नचकिंचदांतरम, जब उस परमात्मा में स्थित हो जाओगे तो न तो कोई बाहर है न कोई अंदर है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। जब तक देखो, अब देखो एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं, सब में परमात्मा को देखने का एक तरीका बताते हो, आप किसी को भी देखो सबके ऊपर परमात्मा की मोहर लगी हुई है, एक मोहर लगी हुई है। जैसे आपके यहां डाक खाने की चिट्ठी आती है उस पर मोहर लगी रहती है, किसी भी ऑफिस का कोई कार्ड आता है तो उसके ऊपर मोहर लगी, मोहर नहीं लगी होगी तो कहेंगे साहब ये पता नहीं किसका कागज है साहब, मोहर तो लगी नहीं हुई, हम क्या करें। ऐसे ही अपने सबके ऊपर भगवान की एक मोहर लगी हुई है, बताओ कि मोहर लगी हुई है क्या। आप किसी को भी देख लेना, किसी भी प्राणी को देख लेना, उसके शरीर के ऊपर ओंकार का चिन्ह है, ये देखो ये ओंकार का चिन्ह है, नेत्र से आए और यूं आकर के यूं आए। गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, गधा हो, बिल्ली हो, ऊंट हो, कोई हो, सबके ऊपर ये चिन्ह रहेगा, ये भगवान के ये एक मोहर लगी हुई है। आप किसी को भी देख लो, हमारी माता जी उनको देख लो, आप जो है बहन जी को देख लो, कोई स्त्री पुरुष कोई हो, बच्चा हो, छोटा हो, जवान हो, सबको देख लो, ये चिन्ह सबके ऊपर मिलेगा। तो समाधि काल से पहले ओंकार मात्रम विचिंतयेत, सबके ऊपर जो ओंकार का चिन्ह है उस ओंकार के चिन्ह को देखो। अब कहते हैं ओंकार में क्या है, ओंकार में तीन मात्रा है, ए ऊ और मैं। ए तो है जागृत अवस्था का बोध कराने वाला, ऊ है वो स्वप्न का बोध कराने वाला, मैं है ये सुषुप्ति का बोध कराने वाला, और फिर जो यूं करते हैं ना आगे जो चौथा जो मैं के बाद ऊ वो होती है, ये है प्राज्ञ का बोध कराने वाला। इस प्रकार से अपने आप के अंदर संतुष्ट रहते हुए ऐसे रहो जैसे समुद्र रहता है, अचल वारी सिंधुवत, तरंगों से रहित जो समुद्र होता है एकदम शांत वैसे रहो। इसका भी अभ्यास करने पर बहुत जल्दी अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ध्यात्वैव आत्मा न महर निशम मुनि, प्रातःकाल सायंकाल रात दिन हरदम इस रूप को वो समझने वाला मुनि समझ ही जाता है, इसमें कभी असफल नहीं हो सकता। देखो आपको लाख रुपए मिले नहीं मिले पता नहीं है, परंतु ये यदि अभ्यास करें तो निश्चित सफलता मिल सकती है। जिस प्रकार से जल में जल, समुद्र के अंदर जल, और दूध में दूध, आकाश में आकाश, और अग्नि में अग्नि एकदम अभिन्न रहती है, समुद्र का जल समुद्र के, समुद्र और जल एक ही है, दूध दूध एक ही है, इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा एक ही है। इस जगत को एकदम मिथ्या समझ करके और त्याग ही देना चाहिए, निराकृतित्वात् अनेक युक्तियों से, शास्त्र आदि प्रमाणों से और अपने अनुभव से जगत को झूठा समझ करके और ऊपर ऊपर से व्यवहार करना चाहिए। जैसे भाई हमारे बीकानेर में हम जाते हैं तो हमको इधर सूर्य उदित होगा लगता है, यहाँ इधर होता है, हमारे उधर उधर होते, बीकानेर में इधर उगता है, यहाँ इधर उगता है। अब कहते हैं साहब सूर्य किधर उगता है, कि इधर उगता है, तो ये क्या है, ये पूरब है। तो क्या बीकानेर में पश्चिम में उगता है क्या? नहीं नहीं, वो वहां भी पूरब में उगता है, लेकिन दिग्भ्रम हुआ, दिग्भ्रम। ऐसे ही संसार का ऊपर ऊपर से व्यवहार करो, अंदर से समझे में कि ये इधर पूरब है और इधर ये पश्चिम है, तो बीकानेर देखते हैं तो इधर ये पूरब मिलेगा और यहां से देखो वो पश्चिम में, इसलिए पश्चिम दिशा में वो रहेगा। तो जगन मृषे वे थी, ऊपर ऊपर से आप ऐसा विचार करो, ऐसे रहते हुए संसार में अपना व्यवहार करो। ये मैंने आपको रहस्यमय बात सुनाई लक्ष्मण जी, ऐसा विचार करते रहोगे तो सारे पाप राशि से तुम मुक्त हो जाओगे। जो व्यक्ति निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है, अथवा जो सगुण साकार मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, वह व्यक्ति अपने चरण रेणु से संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला होता है। ये मैंने सारे वेद वेदांत का सार तुमको सुना दिया। इसको जो गुरु भक्ति युक्त होकर के श्रद्धा पूर्वक सुनता है, मेरे वचनों में श्रद्धा रखता है, वो अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब लक्ष्मण जी को क्या हुआ इस विषय में कुछ बता नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने उसके बाद हां भरी कि ना भरी, कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी सुनते रहे। अब महादेव भगवान शंकर बोलते हैं कि सुनो पार्वती, एक बार की बात है कि मथुरा के बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान राम के दर्शन करने आए, यमुना तीर के वहां रहने वाले भगवान राम से मिले। भगवान ने पूछा, आओ ऋषि वर, कैसे आए आप लोग, मैं तो बड़ा धन्य हो गया कि मेरे यहां संत महात्मा आते ही रहते हैं, बताइए महाराज क्या है, आप हमको क्या आज्ञा दे। ब्राह्मण तो हमारे देवता हैं, हमारे इष्ट देव हैं, बोलो हम आपकी क्या सेवा करें। त तब उनमें च्यवन ऋषि थे, उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमारे पर तो एक आफत आ गई। क्या हो गया कि ये मधु नाम का एक दैत्य था, मधु दैत्य, भगवान को मधुसूदन बोलते हैं ना, मधुसूदन, तो मधु दैत्यम सुदैति उत्पीड़यति इति मधुसूदन है, भगवान मधुसूदन है क्योंकि वो मधु नाम के दैत्य को मारे हुए हैं। तो वो मधु नाम का एक महादैत्य सतयुग में हुआ था, वो वास्तव में देवता ब्राह्मण आदियों का बड़ा पूजक था, और उस मधु नाम के दैत्य को एक बार भोलेनाथ भगवान शंकर ने त्रिशूल दे दिया कि लो बेटा हम तुमको त्रिशूल देते हैं, तुम्हारे पर कोई धर्म में बाधा करने वाला आएगा तो जो है तो इस त्रिशूल से तुम मार देना, ये त्रिशूल जो है तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे धर्म कर्म में कोई बाधा डाले उसको तुम मारोगे तो ये त्रिशूल का प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा, बच नहीं सकता। वो त्रिशूल जो है उस मधु नाम के दैत्य ने अपने पास रख लिया और रावण की एक लगती में बहन थी। लगती में बहन होना और एक सगी बहन होना अंतर है, आप लोग जानते ही हो इसको, क्या बताए। लगती में एक बहन थी, उसका नाम था कुंभी नसी। तो कुंभी नसी है उसके साथ में उसका विवाह हुआ, तो उसका एक लवणासुर नाम का लड़का हुआ है महाराज, वो तो बहुत ही ज्यादा उद्दंड हुआ हुआ है, देवताओं का ब्राह्मणों का सबका उच्छेदन करने वाला, और जरा सी कोई कोई आगे बोले तो त्रिशूल दिखा देता है। अब भगवान शंकर का त्रिशूल का बल मिल गया और जो है उस बल से सबको पीड़ित करने लग गया। पीड़ितास्तेन राजेंद्र है वयम त्वाम शरणम गता, वो लवणासुर से हमारा पिंड छुड़ाओ महाराज। अब हम लोग क्या करें, वो कोई भी योद्धा उसके सामने जाए तो वो त्रिशूल से उसको मार दे, तो वो तो त्रिशूल तो शंकर भगवान का दिया हुआ। भगवान ने कहा देखो आपका डरना भी सही है, लवणासुर का विनाश मैं करवा दूंगा, आप लोग कोई चिंता मत करो। राम जी ने अपने चारों भाइयों के बीच में बैठे हुए थे, तीनों भाइयों से पूछा भाई लवणासुर को कौन मारेगा। लवणम राक्षसम दद्यात ब्राह्मणेभ्यो अभयम महत, इन ब्राह्मणों को अभय देने का पुण्य कौन लेगा। तो भरत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं ये काम करूंगा। इतने में शत्रुघ्न जी बोले कि हे राम, हमारे भरत जी महाराज आपके वियोग में नंदीग्राम में 14 बरस तक बहुत वियोग में दिन निकाले हैं, और लक्ष्मण जी ने आपके यहां बहुत सेवा की, ये भी जंगल में बहुत वर्षों तक रहे, 14 बरस तक खूब युद्ध किया, ये भी थक गए होंगे। मेरा तो कभी कोई युद्ध से काम ही नहीं पड़ा अभी तक, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी लवणासुर को मारने के लिए मथुरा रवाना होता हूँ, और हे रघुश्रेष्ठ उसके जितने भी साथ में रहने सबको मार के आ जाता हूँ। भगवान ने कहा वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा शत्रुघ्न, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसका बड़ा स्नेह किया, स्नेह तो किया लेकिन साथ साथ में ये भी कह दिया कि जाओ शत्रुघ्न, तुम जो है मथुरा का राज्य भी अब तुम्हारा ही हो जाएगा, हम तुम्हारा यहीं अभिषेक कर देते हैं, जाओ मथुरा का राज्य तुमको मिलेगा। तब जो है वो घबरा गया कि महाराज मथुरा का राज्य का अर्थ तो ये है कि आप मुझे यहां से भेज रहे हो। कह नहीं नहीं तुम मथुरा ही रहो, और ये देखो ये बाण ले जाओ। बहुत घबराया वो, इसका अर्थ क्या हुआ। अब देखो भगवान ने आज्ञा तो तीनों में से कौन करेगा, कि भरत ने कह दिया मैं करूंगा तो शत्रुघ्न जी को बीच में बोलना नहीं चाहिए था। जो आदमी दूसरे के लिए कहवे काम को खुद बीच में बोलता है, तो भगवान ने कहा अब तुम मथुरा के राजा हो जाओ। तब उसको समझ में आया कि अरे भाई बड़े आदमियों के बीच में छोटे आदमी को नहीं बोलना चाहिए। फिर भगवान ने एक बाण दिया कि देखो ऐसे वैसे से वो नहीं मरेगा, ये बाण तुम ले जाओ, इस बाण से तुम लवणासुर को मार देना। पर कब मारो? लवणासुर जब अपने त्रिशूल को पूज करके और वो वन में चला जाए, त्रिशूल तो उसका पड़ा है, यूं ही वन में जाए, उस समय तुम आकर द्रवज्य पर खड़े हो जाना, उस समय युद्ध करना, हाथ में त्रिशूल हो तब मत करना। क्या ठीक है महाराज? तो वो वहां से रवाना हुआ और ये भी कह दिया कि योत्स्य से त्वया क्रुद्ध है, वो तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, तुम युद्ध में डरावने डरावना रूप धारण करके तुम्हारे सामने कुछ भी करे तुम घबराना नहीं, फिर तुम उस क्रूर लवणासुर को मार दोगे और फिर नगर के अंदर तुम पहुंच जाओगे, तब तक मैं तुम्हारे पास 5,000 घोड़े और 2,500 रथ और 600 में हाथी और अयुता त्रयम 30,000 में तुम्हारे पास में पैदल सैनिक, ये सब तुम्हारे पास भेज दूंगा। इतना कह करके शत्रुघ्न जी को विदा किया, आशीर्वाद दिया। शत्रुघ्न जी ने जैसा किया वैसा का वैसा ही उन्होंने जाकर वहां पर लवणासुर को मार दिया और वे मथुरा के राजा हो गए। अब यहां पर एक प्रसंग पूरा हो गया। अब आगे भगवान यज्ञ करते हैं और सीता जी को वहां पर उपस्थित किया जाता है। ये प्रसंग मध्यम विश्राम के बाद चलेगा। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम